ओम शांति। हम बड़े चले निर्भय होकर जग के अंधियार मिटाएंगे, पापी नर को अपनाकर उनके मन के विष को पीकर क्या करेंगे, अमृत का कलश पिलाएंगे। हम बड़े चले निर्भय होकर। सूरज भाई जी का लिखा हुआ यह गीत आत्मा की एक ऐसी उच्च स्थिति का चित्रण है जहां आत्मा निकल पड़ी है पापी नर को अपनाने, उनके मन के विष को पीने और उन्हें अमृत के कलश से भरने। कितना महान कार्य है ये, कितना ऊंचा कार्य है ये, और ऐसे ऊंचे कार्य को करने के लिए आज सुबह बाबा ने हमें कवच दिया है। कौन सा? सहन शक्ति का कवच। सभी ने पहना? सभी ने पहना ये कवच? ये कवच यदि पहन दो तो सारे विघ्न पार। क्यों सहन करना है सभी से प्रश्न है, सहन क्यों करना है? क्या उत्तर है? सर्व विघ्नों को पार करने के लिए सहन करना है। कब तक? पर क्या सहन ही करते रहे? क्यों सहन करना है? और बहनों की तरफ से सहन क्यों करना है? सहन शक्ति को क्यों धारण करना है? जो सामने आ रहा है वो कर्मों का फल है, इसलिए सहन करना है। और सहन जो करेंगे वो सहनशाह बनेंगे। और तपस्वी मूर्त बनने के लिए, और सहना ही आत्मा का गहना है। आत्मा का श्रृंगार है सहना। वाह। और अर्थात परिस्थिति को स्वीकार करना। हम सहन कर रहे हैं अर्थात परिस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। और सहनशाह हो गया, बन चुके हैं इधर, नहीं इधर बन गए हैं। और सफलता मूर्त बनने के लिए, और विश्व कल्याण के लिए, परिवर्तन के लिए। किसका? स्वयं का या विश्व का? स्वभाव संस्कार का क्या? क्या करना है स्वभाव संस्कार का? क्यों सहन करना है? और क्या कहेंगे भाइयों की तरफ से? हिसाब किताब कर दिया इधर चिपटू। दूसरा पॉइंट बताओ। जितना सहन करेंगे उतनी पूजा होगी। तो ज्यादा पूजे जाने के लिए ज्यादा सहन करना पड़ेगा। और पीछे से क्यों सहन करना है? एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? व्यर्थ संकल्प आएंगे। सहन नहीं किया तो, और सहन किया तो व्यर्थ संकल्प समाप्त। बहनों की तरफ से क्यों सहन करना है? आत्मिक शक्ति बढ़ती है सहन करने से. ये पावरफुल पॉइंट है. और बहनों की तरफ से किसने कहा ये उत्तर? ये सबसे पावरफुल उत्तर है. हमें सहन करना है क्योंकि ये परमात्मा आज्ञा है. बच्चे सहनशील बनो. 95 की अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने आदेश दिया है. ये परमात्मा आदेश है. बच्चे सहनशील बनो. इसके लिए नहीं कि हम कमजोर है, इसके लिए नहीं कि हमारे पास शब्द नहीं है, इसके लिए नहीं कि हम प्रतिकार नहीं कर सकते परिस्थिति का, परंतु इसलिए क्योंकि भगवान का आदेश है. उसके लिए कोई व्यक्ति एक लुहार की दुकान के पास से निकलता था और उसने देखा कि लुहार का काम होता है हथौड़ा, जो नीचे जिसको कहते हैं निहाई, इंग्लिश में एनविल, वो निहाई पर पटकता है हथौड़ा. और उसने देखा कि किसी कोने में बहुत सारे टूटे हुए हथौड़े पड़े हुए हैं. तो वो व्यक्ति उस लुहार से पूछता है, कितनी निहाई की आवश्यकता पड़ी होगी इतने सारे हथौड़े के टुकड़े करने के लिए? हथौड़े बहुत सारे हैं, परंतु टुकड़े टुकड़े हो गए और एक किनारे पर पड़े हुए हैं. तो वो पूछता है, कितनी निहाई, वो एनविल जिसपे वो ठोकता है, कितने निहाई की आवश्यकता पड़ी होगी? तो लुहार कहता है, कितने? केवल एक. क्योंकि वो जो निहाई होती है वो सहन करती है. हथौड़ा मार करता है, आक्रमण करता है, वार करता है, इसके लिए टुकड़े टुकड़े हो गया. परंतु जिसने सहन किया वो अभी भी वैसा ही है और एक ही है, अनेक नहीं. सहनशीलता एक शक्ति है, सहनशीलता एक गुण है, सहनशीलता आत्मा का दिव्य श्रृंगार है. सहन करने से पहले की आत्मा की स्थिति और सहन करने के बाद की स्थिति वही नहीं है. सहनशीलता से आत्मा जो स्ट्रेच हुई है वापस वही स्थिति को रिगेन नहीं करती, वापस उसी अवस्था में नहीं आती, अब वो बढ़ चुकी है. इसके लिए सहन करना, सहनशीलता का कवच धारण करना. एक बहुत सुंदर चित्र हमने देखा था. उस चित्र में ऐसा दिखाया गया था कि एक हिरन जो जवान है और वही हिरन जब बूढ़ा हो गया, जब जवान है तो उसे एक तीर लगा है और वो नीचे गिर गया है. वही हिरन सामने के चित्र में थोड़ा बूढ़ा हो गया है और इतने सारे तीर लगे हुए फिर भी खड़ा है. सहनशीलता. जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर हमें सहन करना पड़ता है और उस सहनशीलता के बाद ही वास्तविक आत्मा का आध्यात्मिक विकास होता है. चेतना की गहराई, चेतना अपने उच्चतम शिखर पर तभी पहुंच पाती है जब उसमें बल भरता है, शक्ति भरती है. सहन करना। वास्तव में संसार में सहन करना इसे गुण तो माना जाता है, पर कई लोग समझते हैं ये कायरता है। महात्मा गांधी कभी किसी सभा में प्रवचन कर रहे थे, एक क्रांतिकारी युवक, क्रांति के विचारों से भरा हुआ युवक खड़ा होता है सभा के बीच में, भरी सभा में, और जोर से चिल्लाता है कि यू आर कावर्ड, तुम कायर हो। तो क्या रिएक्शन दिया होगा महात्मा गांधी ने? वो कुछ नहीं कहते, चुप, नो रिएक्शन, केवल एक मधुर मुस्कान। खान अब्दुल गफार खान, जिसने ये दृश्य को देखा, वो लिखता है कि इस दृश्य को देखने के बाद मेरे जीवन में आमूल परिवर्तन आया। एक व्यक्ति सामने से उठकर ऐसा अपमान करता है और फिर भी सामने वाला चुप। और उसी के बाद खान अब्दुल गफार खान, बच्चा खान जिसको कहते हैं, एक नई संस्था की उसने स्थापना की 1929 में, और जिसका नाम उसने दिया था खुदाई खिदमतकार, जो कि फिर बाबा ने अपनी मुरलियों में इस शब्द का प्रयोग किया कि वो खुदाई खिदमतकार नहीं है, तुम खुदाई खिदमतकार हो। तो देखो कैसे सहन तो हमने किया और क्या प्रभाव पड़ा। हमें देखती है आत्माएं, यदि सोचो सबके सामने हमारा अपमान कर दिया जाए, सारी सभा के सामने, हमें बहुत बुरा लगता है। हम सोचते हैं कि इसने ऐसा सबके सामने नहीं कहना चाहिए था, एकांत में अगर कह दिया होता तो भी ठीक था, सबके सामने क्यों कहा। परंतु सबके सामने उसने कहा, परंतु देखने वाले सब कुछ देखते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि जितना कहा गया उतने कहने की आवश्यकता नहीं थी। वो ये भी देखते हैं कि जिसको कहा गया वो उसने सहन किया, इसके लिए इतना बुरा लगने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, सभी अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण करेंगे और पहुंचेंगे बाबा के पास और देखेंगे बाबा अपने हाथों से हमें सहनशीलता का कवच पहना रहे हैं, और इस अभेद्य कवच पहनने के बाद आज से इस संसार की कोई परिस्थिति, इस संसार के किसी के कटु वचन, इस संसार के किसी आत्मा का कटु व्यवहार इस कवच को भेद ना सकेगा। ऐसा कवच बाबा हमें पहना रहे हैं, तो चलो सभी बाबा के पास। सहन क्यों करना है का पहला कारण है क्योंकि ये परमात्मा आज्ञा है। दूसरा कारण, हमें सहन करना है क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं, हम इस संसार की सर्व महान आत्माएं हैं, बाकी सभी आत्माएं हमारी वंशावली है, अज्ञानी है, अनजान है, छोटे बच्चे है। कुछ दिन पहले वरदान आया था, अज्ञानी है, अनजान है और छोटे बच्चे है। हम पूर्वज हैं, इसीलिए हमें सब कुछ सहन करना है। निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ ठंडी गर्मी मान अपमान सब कुछ स्थित प्रज्ञ आत्मा की निशानियां हैं, ये कि वो सब कुछ सहन करता है। कभी तो ये संसार प्रशंसा करेगा तो कभी निंदा, कभी ग्लानी, कभी तो सब कुछ होगा कभी कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें सहन करना है। और तीसरा कारण, जब आत्मा सहन करती है तो उसके अंदर छिपी हुई सुप्त शक्तियां जागृत होती है। आत्मा के अंदर निहित सुप्त शक्तियों का जागरण, इसलिए सहन करना है। दूसरा प्रश्न है, किसे सहन करना है, क्यों सहन करना है। दूसरा प्रश्न, किस किस को सहन करना है, किसको सहन करना है, किसको सहन करना है, किसको किसको, जोर से बोलिए। ब्राह्मण आत्माओं को, इतने बुरे हैं? हाँ, किसको, दुश्मन को। क्या नहीं, वो हो गया, सहन क्यों करना है, वो भी एक कारण है। चलो, देवता बनना है तो सहन करना ही पड़ेगा, करो सहन। जब तक देवता नहीं, जब तक सहन नहीं करेंगे देवता नहीं बन सकते। किसी ट्रक में मार्बल की एक मूर्ति और मार्बल की कुछ टाइल्स जा रहे थे, पीछे रखी हुई थी, बहुत सारी टाइल्स थी, टाइल्स के टुकड़े थे और कुछ मूर्तियां थी। तो टाइल्स के टुकड़े मार्बल की मूर्ति से पूछते हैं, तुम और हम एक ही जाति के हैं, एक ही पत्थर से निकले, एक साथ रहे, एक ही साथ तुम भी बनी और मैं भी बना, फिर भी ऐसा क्यों कि तुम जा रही हो मंदिर और मैं जा रहा हूं घर के नीचे लगाने के लिए, जो कि पैरों के नीचे रोंदा जाऊंगा बार बार, ये अंतर क्यों तुम में और मुझ में। तो क्या उत्तर दिया होगा उस मार्बल की मूर्ति ने, उस मार्बल के टुकड़े से जो कि टाइल्स बनने जा रहा है। वो मूर्ति कहती है, क्योंकि मैंने सहन किया और तुम में यह हिम्मत नहीं थी सहन करने की, तुम टूट कर गिर गए, मैंने सहन किया। तो क्या कहा माता जी ने, सहन, देवता बनना है तो करना ही पड़ेगा सहन, नो ऑप्शन, कोई और विकल्प कोई नहीं, करना ही पड़ेगा। और जो मूर्ति जितनी सुंदर बननी है उसको तो बहुत ज्यादा सहन करना पड़ता है, उसका नाक बनाने के लिए, आंख बनाने के लिए, कान बनाने के लिए फाइन स्ट्रोक्स दिए जाते हैं, उसमें तो दर्द ज्यादा होता होगा। एक तो है बड़ा स्ट्रोक, एक लगाया और गिर गया, परंतु जो चेहरा जितना सुंदर बनना है, जो मूर्ति जितनी सुंदर बननी है, जो मूर्ति जितनी दर्शनीय मूर्त बननी है, आकर्षण मूर्त, उसे सहन करना पड़ेगा। पर हमारा प्रश्न कुछ और था, प्रश्न था किसको सहन करना है, जिसका जिसका इलाज ही ना हो। लाइलाज जो है उसे सहन करना पड़ेगा, व्यक्तियों को सहन करना होगा, परिस्थितियों को सहन करना होगा, प्रकृति को सहन करना होगा, उन सभी चीजों को सहन करना पड़ेगा जिनका इलाज नहीं है, उन सभी चीजों को सहन करना पड़ेगा जिसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते। व्यक्तियों को सहन करना, वास्तव में हर एक वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए था। यह ड्रामा एक्यूरेट है, हर एक्टर इस ड्रामा का कैसा है, इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है, पाठधारी है और कैसा है, कैसा है, निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। इस ड्रामा का हर एक्टर संपूर्ण निर्दोष है। ये ड्रामा सत्य है, जो हो रहा है वही होना चाहिए। मानता है दिल इस बात को कि कहता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। ये ड्रामा भगवान को पसंद है, इसलिए तुम्हें भी पसंद होना चाहिए। पसंद नहीं है पर, क्योंकि हम हमारी संकुचित दृष्टि से देख रहे हैं, हमारा स्वार्थ निहित है कहीं ना कहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट, इसके लिए हमें सही नहीं लग रहा। ड्रामा एक्यूरेट है, हर एक्टर उसकी हर एक्शन, जो हो रहा है वही होना चाहिए, जो हो रहा है वही सत्य है। इसके लिए किस किस को सहन करना है, व्यक्तियों को। कौन और किसे सहन करना है, परिस्थितियों को। जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही है, वास्तव में हमारे ही किसी कर्म का वो परिणाम है। हमने ही कुछ ऐसा किया था, उसके कारण ही ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है। हमारी परिस्थिति के लिए इस संसार का कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। जो भी हो रहा है, मैं और मैं खुद उसका जिम्मेवार हूं। जिस घर में जन्म हुआ, जो माँ बाप मिले, जो भाई बहन मिले, जो मित्र संबंधी मिले, वर्तमान में जहां है, जो बच्चे हैं, जो पति है, जो पत्नी है, सब कुछ हमारी ही रचना है। हर आत्मा वहीं पहुंची है जहां उसे पहुंचना चाहिए था। एक साधु किसी गांव में प्रवेश करता है और राजा उसे पकड़कर कारागृह में डाल देता है। 7 दिन के बाद जिस अपराध के लिए उसे डाला था, जो चोरी हुई थी राज्य में, पता चलता है वो चोर कोई और था, राजा उस साधु को छोड़ देता है। साधु जब पकड़ा जाता है तब भी मौन, और जब छूटता है तब भी चुपचाप जाने लगता है। तो राजा उसे पूछता है कि हे महात्मन रुको, जब मैंने तुम्हें कारागार में डाला था तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, जबकि तुमने तो ये चोरी की ही नहीं थी। वो कहता है राजन, ये मुझे पहले ही पता था कि मैंने तो चोरी की ही नहीं, परंतु उसके बाद भी अगर ये परिस्थिति आ रही है, इसका अर्थ ये मेरे ही किसी और जन्म का पाप था, मेरे ही किसी और जन्म का पाप था। कृष्ण निंदा घड़ली मनहुन महार जन्म प्राप्ति। संत क्या दिखते हैं कि मेरे से शायद किसी जन्म में कृष्ण निंदा हुई थी इसके लिए इस जन्म में महार बना हूं, छोटी जाति का बना हूं, परंतु जो भी हो रहा है उसमें संतुष्ट। उम्भरट्याशी कैसे शिव, आम ही जातिहीन, रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम ही दीन। पायरीशी हो उदंग गाऊनी अभंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। अंदर जाने को मना है, जाने नहीं दे रहे पंडित पुजारी पुरोहित। उम्भरट्याशी कैसे शिव, आम ही जातिहीन, परंतु चंद्रभागे चा पान्याने अंग अंग ना हो, उसमें भी खुश है, उसमें भी संतुष्ट है, परिस्थिति को स्वीकार किया हुआ है, कंप्लेंट नहीं है। क्यों? कृष्ण निंदा घड़ ली मनुन महार जन्म प्राप्ति। जिस घर में जन्म हुआ है, जहां हम है, जिन लोगों के बीच में है हम, वो हमारी ही रचना है। ये जो परिस्थिति आई है, हम स्वयं जिम्मेवार है उसके, इसके लिए सहन करना है। व्यक्तियों को, परिस्थितियों को, प्रकृति को। प्रकृति को किसने दूषित किया? हमने ही दूषित किया है प्रकृति को। इस प्रकृति ने हमारी कितनी सेवा की है, कब से सेवा कर रही है प्रकृति हमारी, कब से सेवा कर रही है? सतयुग से सेवा कर रही है, और हमने क्या किया? दूषित किया है इसे। इसके लिए ब्राह्मणों का एक कर्तव्य है, रोज अमृत वेला 5 तत्वों को सकाश देना। पांचों ही तत्वों को सकाश देना, एक एक तत्व के पास जाकर उन्हें पवित्रता की किरणें देना। प्रकृति मां है, व्यक्ति, परिस्थितियां और प्रकृति, सबको सहन करना है। तो आज की मुरली की शुरुआत कौन किससे मिल रहा है? दिलाराम बाप। आज दिलाराम बाप किससे मिलने आए हैं? कौन से बच्चों को मिलने आए? दिल तख्त नशीन बच्चों को मिलने आए, उन बच्चों को मिलने आए हैं जो दिल को आराम देने वाले हैं। 2 समान दिए हैं बाबा ने। हम कौन हैं? दिल तख्त नशीन। हम कहां विराजमान हैं? उसके हृदय सिंहासन पर। कहां विराजमान है? उसके हृदय सिंहासन पर, उसके दिल तख्त पर। उसने हमें अपने दिल की डिब्बी में रखा है। कभी बाबा ने कहा है, बाप ने तुम्हें अपने दिल की डिब्बी में सुरक्षित रखा है। बाप के दिल में कुछ बातें हैं तो बच्चों के दिल में भी कुछ बातें हैं, और दोनों ही बातें कैसी है? समान है। क्योंकि तुम जब आपस में रूरियान करते हो तो क्या कहते हो? क्या कहते हो? बाबा। अच्छा, ये अव्यक्त वाणी है पिछले सीजन की। आपस में जब रूरियान करते हो तो कहते हो, बाबा ने आज मुरली में ये सुनाया, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने अशरीरी बनने को कहा, बाबा ने ऐसी ऐसी बात सुनाई, लास्ट सीजन की मुरली। परंतु आज आपस में रूरियान करते हो तो क्या कहते हो? क्या कहते हो? कि बाप समान, बाप ने जो कहा वो करके दिखाएंगे, या फिर क्या कहते हो, बाप समान बन के दिखाएंगे। तो बाबा ने 8 बातें देखी है। कौन कौन सी? बाप के दिल में वैसे तो कहा एक ही बात है, परंतु बहुत सारी लिस्ट गिनाई है। सुबह क्विज थी तो कौन सी वो बातें हैं क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं बाबा की, हर बच्चा क्या बन जाए, विश्व का मालिक बन जाए, हर बच्चा विश्व का मालिक बन जाए। विश्व का मालिक बनने के लिए अभी स्वराज्य हमारे वश में हो, ये जो हमारा देह है हमारे वश में हो, ये जो मन बुद्धि और संस्कार है वो हमारे वश में हो, तो सबसे पहली बात कौन सी की, हर एक बच्चा विशेष बच्चा क्या बन जाए, विश्व का मालिक बन जाए। दूसरा, हर एक बच्चा विश्व का राज्य भाग का अधिकारी बन जाए। विश्व का राज्य भाग मिल रहा है तुम्हें। कभी भक्ति में तुमने सोचा था कि भगवान आकर ये सब दे देगा? कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि भगवान आएगा और विश्व का राज्य भाग हमें दे देगा। तीसरा, हर एक बच्चा एक दो से आगे रहेगा, एक दो से श्रेष्ठ, गुण संपन्न, शक्ति संपन्न, नंबर वन बने। भगवान की कितनी श्रेष्ठ आशाएं हैं, हर एक एक दो से आगे हो, ऐसा शब्द कहीं किसी साहित्य में नहीं है कि हर एक कैसा है, एक दो से आगे है। बाबा की मुरलियों में शब्द बहुत बार आता है, हर एक एक दो से आगे। आगे कौन है, इसका मतलब तुम सोचते रहो, हर एक एक दो से आगे है। गुण संपन्न बने। कुछ समय पहले संडे में मुरली चली थी, बाबा मालाएं देख रहे, किसी की माला तो नेकलेस जैसी है, किसी की माला पैरों तक है, किसी की मालाओं में लड़ियां लगी है और किसी की मालाएं जैसे ड्रेस बन गई है। बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा गुण संपन्न बन जाए। बाबा चाहते हैं हर एक बच्चा शक्ति संपन्न बन जाए, शक्तिशाली बन जाए। बाबा से मांगना नहीं है कि हे बाबा मुझे शक्ति दे दो। माताएं मांगती है बाबा से, नहीं मांगती है, थोड़ी सी सहन शक्ति दे दो, पैसे कम है थोड़े से पैसे दे दो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें हीरे देने आया हूं, तुम कागज मांगते हो। बाबा बहू बहुत तंग करती है, पति बहुत तंग करता है, थोड़ी सी सहन शक्ति दे दो। बाबा का क्या उत्तर है, दे दो नहीं, दे दी है, अपनी पर्स खोल कर देखो उसमें रखी है। जनते ही बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दे दिया है सभी को। अब वरदान को यूज करो, मांगना नहीं है, सहयोग दो, ऐसा नहीं कहो। माला में यदि आदि में आना है, माला में तीन है, घोड़ेस्वार, महारथी घोड़ेस्वार और पैदल चलने वाले, जो सबसे पहले आने वाले माला के आदि में आने वाले फर्स्ट डिवीजन वाले, सहयोग दो ऐसा कभी नहीं कहते, वो है उड़ती कला वाले, बीच वाले हैं चढ़ती कला वाले, और बाद में तो रोने और चिल्लाने वाले हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं, उसको छोड़ो। तो फर्स्ट डिवीजन वाले अर्थात हर संकल्प, हर सेकंड बाप की याद, निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह हो, सदा संपन्न रहेंगे। सहयोग दो, ये मांगना नहीं है, लेना है अधिकार से, वो दे रहा है। बारिश हो रही है और यहां बैठकर हम कह रहे हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, परमात्मा प्रेम की वर्षा हो रही है, भीगना है इसमें। तो पहला, विश्व का मालिक बने हर बच्चा। दूसरा, विश्व का राज्य भाग हर एक को प्राप्त हो। तीसरा, हरेक एक दो से श्रेष्ठ गुण संपन्न शक्ति संपन्न नंबर वन हो। चौथा हरेक की विशेषता कैसी हो? दूसरी आत्माओं को आकर्षित करने वाली, आकर्षण मूर्त हो कि दूसरी आत्माएं भी गुणगान करे, दर्शनीय मूर्त बाबा ने कहा है। हरेक की विशेषता कैसी हो? ऐसी हो कि हरेक दर्शनीय मूर्त लगे और दूसरी आत्माएं भी गुणगान करे। एक दो से आगे पांचवा, हरेक कैसा क्या बन जाए? लाइट हाउस, माइट हाउस, और कौन से सितारे? चमकते हुए धरती के सितारे बन जाए। वो चाहता है सब ऐसे बन जाए, एक नहीं सब। ये भक्ति मार्ग नहीं है जिसके में कोई एक बन जाए और उसके पीछे पीछे सब चलो। हरेक को बनना है, मुझे बनना है। लाइट हाउस क्या करता है? समुद्र में राह दिखाता है जो भटक गए हैं उनको। माइट हाउस अर्थात जो हमारे पास आए, शक्तिशाली बन के जाए। ऐसा नहीं कि हम अपना रोना और दुखड़ा उसे सुनाने लगे, कोई दिखा और सुनाना चालू। ये लाइट हाउस के लक्षण नहीं है, ये माइट हाउस के लक्षण नहीं है। धरती के सितारे, किसी एक वरदान में बाबा ने कहा था तुम हो धरती के सितारे, वो है आसमान के सितारे, वो है प्रकृति की सत्ता, तुम हो प्रकृति पति की सत्ता, वो है जड़, तुम हो चेतन, वो रात में चमकते हैं, तुम दिन और रात हर समय चमकते हो। तुम लाइट हाउस हो, तुम माइट हाउस हो, तुम धरती के सितारे हो। छठवां, हर एक सितारे में क्या है? एक दुनिया है। क्यों है? श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प का खूट खजाना विशेषता उसमें भरी है। इस आधार से क्या हो गए? वो एक एक सितारा जैसे उसमें दुनिया है। यह अनुभव हर एक आत्मा अपने अंदर अखूट खजाने भरे। किसका? किसके खजाने? संकल्प के। श्रेष्ठ संकल्प कहां मिलेंगे? श्रेष्ठ संकल्प मुरलियों में। संसार की आत्माओं के पास जाओ और उनको कहो कि 10 श्रेष्ठ संकल्प बताओ, उनके पास है ही नहीं। संसार के लोग देखो कौन सी चर्चा करते हैं, किसकी बहू क्या कर रही है, किसकी सास ने क्या किया, कंपनी में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, टीवी में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इसके अतिरिक्त उनके पास और कोई चर्चा नहीं है। श्रेष्ठ संकल्प है ही नहीं किसी के पास संसार में। हमारे पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, बाबा ने कहा अखूट खजाना या विशेषता। किसकी? श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। संसार की आत्माएं श्रेष्ठ कर्म कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे सब विकर्म बनेगा। ज्ञान हो तब तो करें। सातवां, अलौकिक दुनिया, वो तो आठवां है। चलो पहले वो ले लेते हैं। हरेक सितारों में प्राप्तियां, अलौकिक प्राप्तियों की दुनिया, देखकर आत्माएं वाह वाह करे। और एक, देख देख कर तुमको क्या हो जाए? अपने दुख को भूल, सुख का अनुभव कर हर्षित हो जाए आत्माएं। तो बाबा आज बाप के दिल में ये सारी बातें आ रही है। बच्चों के दिल में कौन सी बातें हैं? वही बातें हैं जो बाप के दिल में बातें हैं। अगर वही बातें बच्चों के दिल में हैं तो बाबा ने लंबी प्रश्नों की श्रृंखला गिनाई है। बहुत सारे प्रश्न एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। क्या क्या कहा है, कौन कौन से प्रश्न है, कौन बताएगा? नंबर वार क्यू, नंबर वन क्यों नहीं, और इसकी विधि जानते हो, और कहां आने वाले हो, राज्य करने वाले हो या राज्य आने राज्य में आने वाले हो? प्रजा बनने की चिंता छोड़ो, वैसे तो साकार मुरलियों में बाबा कहते हैं राजा बनना है तो प्रजा बनानी पड़ेगी। हमारे एक भाई कहते हैं बाबा माउंट में शिव बाबा का एक मंदिर है जिसका नाम है लहरी बाबा, तो बाबा भी ऐसी लहर चलती है बाबा की, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो सभी राजा बनने वाले हो, सभी कहते हो हम विश्व का मालिक बनेंगे, या कहते हो कि कोई कोई बनेंगे, या कहते हो कि किस किस समय पर बनेंगे, सभी कहते हो, तो जो कहते हो वो करते क्यों नहीं? राज्य में आना और एक है राज्य करना, इसमें अंतर है। मेहनत किस में है? राज्य करने में, राज्य आने में कोई मेहनत नहीं है। बाबा ने तो कई बार कहा है जिसने एक दिन भी एक बार भी ज्ञान सुन लिया वो आ जाएगा, उसमें कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। इन सभी प्रश्नों के बाद बाबा एक मुख्य बात पर आ रहे हैं और कह रहे हैं हरेक आत्मा की संपूर्ण स्टेज अपनी अपनी है, हरेक आत्मा की गोल्डन स्टेज अपनी अपनी है, हरेक आत्मा की संपन्न स्टेज अपनी अपनी है, हरेक आत्मा की नंबर वन स्टेज अपनी अपनी है। वहां तक पहुंचेगी बस वही उसकी संपूर्ण स्टेज है। हरेक की संपूर्ण स्टेज में भी अंतर है, जैसे परमधाम में आत्माएं भी उसी तरह है, जैसे ये अगर शिव बाबा है 100% तो उसके पास ब्रह्मा और सरस्वती और जो सेक्शंस है उसी अनुसार वहां जाके स्थित हो जाएंगे जितनी उनकी पावर है, कोई 10 वोल्ट का कोई 1000 वोल्ट का, जैसे बल्ब अलग अलग होते हैं वैसे हरेक की संपूर्ण स्टेज भी अपनी अपनी है। हरेक की संपूर्ण स्टेज एक नहीं है, हरेक की अपनी अपनी स्टेज है। बाबा ने उदाहरण दिया है ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्मा बाबा के एक है पुरुषार्थी स्टेज और दूसरी है संपूर्ण स्टेज। बाबा ने कहा यह अनुभव तो कर रहे हो ना कि उसमें जो विशेषता नहीं थी वो इसमें विशेषता है। कैलाश दीदी का यहाँ उदाहरण है, कैलाश दीदी वतन में गई और बाबा ने उसको कहा कि जाओ पूछ के देख क्या हो, वो ब्रह्मा और मैं क्या अंतर है। और एक सूक्ष्म ज्ञान की पॉइंट यहाँ है, जैसे ही हमारा ब्राह्मण जन्म होता है, शायद किसी ने सुनी नहीं होगी ये पॉइंट, जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमारा संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में प्रकट हो जाता है। फिर ये यात्रा है यहां से यहां तक पहुंचने की, सारी ब्राह्मण जीवन। जैसे ही जन्म हो गया, बाबा ने कहा बाबा दिखा भी सकता है वो रूहानी झलक और फलक तुम्हारे स्वरूप की। जैसे हमारा जन्म यहां होता है, जैसे हम ब्राह्मण बनते हमारा संपूर्ण स्वरूप उधर प्रकट हो जाता है। और हरेक का संपन्न स्वरूप, हरेक की संपूर्ण स्टेज अलग अलग है। ब्रह्मा का उदाहरण, कैलाश दीदी का उदाहरण हम दे रहे थे। बाबा ने दादी दीदी को भेजा और पूछा कि जाओ देख क्या हो, तो वो देखी तो वो गए तो उन्होंने देखा कि वो जो ब्रह्मा है एकदम शुभ्र प्रकाशमयी, बहुत दैदीप्यमान, बहुत तेजस्वी। और उन्होंने आके कहा कि बाबा वो बहुत अच्छा है, आप इतने अच्छे नहीं हो। जो है वो कह दिया। उन्हीं को बाबा ने बाद में भी फिर भेजा था, बाबा के अंतिम समय में कुछ समय पहले, 6 मास शायद, फिर से पूछने के लिए। तब उन्होंने कहा था कि अब वो और आप समान हो, अब समान लग रहे हो। तो हमारा संपूर्ण स्वरूप ऑलरेडी उधर है। और आज की मुरली में तो बाबा ने एक अद्भुत महावाक्य उच्चारण किया, तुम पुरुषार्थियों का तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप क्या कर रहा है? आह्वान कर रहा है। हम उसका आह्वान नहीं कर रहे, वो हमारा आह्वान कर रहा है, हमारा संपूर्ण स्वरूप हमारा आह्वान कर रहा है और क्या कह रहा है, आ जाओ। तो अभी एक मिनट के लिए सभी अलर्ट होके बैठेंगे और एक योग का प्रयोग करेंगे। सोचो हम यहीं बैठे हैं जहां बैठे हैं और इसी रूप में बैठे हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूं तन के इस भव्य भाल पर, और मेरा संपूर्ण स्वरूप ऊपर सूक्ष्म वतन से नीचे उतर रहा है। ये संपूर्ण स्वरूप कैसा है? संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, डबल लाइट, कोई बोझ नहीं, कोई भार नहीं, निर्भार, निर्बोझ, निर्बंधन, सभी विकारों से मुक्त, लाइट का शरीर, लाइट का कार्ब, अंतवाहक शरीर, सटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, वो ऊपर से आ रहा है, इतना तेजस्वी है, और वो आकर मुझ में समा गया। ओम शांति। संपूर्णता के समीप जो आत्माएं पहुंची है आज की इस मुरली में, बाबा ने उनकी निशानियां दिखाई है, बताई है। दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक है जो समीप है, ये वो आत्माएं हैं जो कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि है। दूसरे प्रकार की आत्माएं हैं वो थोड़ा संशय बुद्धि है। पहली प्रकार की आत्माएं, उन्हें संपूर्ण स्थिति स्पष्ट और समीप नजर आती है। दूसरे प्रकार की जो आत्माएं, उन्हें बुद्धि से खींचकर वो स्थिति लानी पड़ती है, बुद्धि योग से खींचकर मेहनत करके उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं। पहले प्रकार वाली सदा विजयी, निश्चय और विजय। दूसरी प्रकार वाले संशय है, शक है उन्हें। कौन सा शक? कौन सा शक? बाप समान बनना तो है परंतु क्या मैं बन सकूंगी, डाउट है, संशय है, संदिग्ध है। पहले प्रकार वाले हैं। बाबा ने फिर से ब्रह्मा बाबा को याद किया। कोई भी जब ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो क्या देखते और क्या वर्णन करते थे? था तो साधारण पुरुषार्थ रूप, परंतु दिखता क्या था? फरिश्ता और देव रूप। व्यक्त भूल जाए और अव्यक्त का अनुभव हो, व्यक्त भूल जाए और अव्यक्त का अनुभव हो, संपूर्ण स्वरूप का अनुभव हो, साधारण स्वरूप ना दिखाई दे। बाबा ने कभी कहा है तुम साधारण कर्म करते हो परंतु तुम्हारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो। बर्तन साफ कर रहे हो परंतु स्थिति श्रेष्ठ हो, झाड़ू लगा रहे हो परंतु स्थिति श्रेष्ठ हो। कर्म इतना महत्वपूर्ण नहीं है, स्थिति महत्वपूर्ण है। किस स्थिति में यह कर्म किया जा रहा है, कौन सी मनोदशा में यह कर्म किया जा रहा है, तो पहली प्रकार वाली आत्माएं जो है वो संपूर्णता के समीप है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है उन्हें। दूसरी जो है, क्योंकि जो दूर की चीज होती है वो इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उन्हें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बीच में संदिग्ध भी है थोड़े थोड़े, और फिर नाजुक भी बन जाते हैं, और फिर अलबेलापन का पर्दा भी आ जाता है, सहन शक्ति की मजबूती नहीं है। यहां फिर बाबा ने कहा विधि है कौन सी, सहन शक्ति का कवच धारण करना, और एक विधि है मुझे करना है ये पाठ। ये समीपता वाली आत्माओं की निशानी है, परंतु जो समीप नहीं है और जिन्हें समीपता स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और समीप नहीं दिखाई देती संपूर्णता, उनमें पहले तो शक है, दूसरा है बाप करे या कोई और करे, ये संकल्प है। कौन सा संकल्प है? बाबा करके दे। डिपेंडेंस है, कुछ हमें कहा जाए करने के लिए तो हम कहते हैं किसी और से कराते हैं, यदि हमें कहा जाए किसी विषय पर चिंतन करो तो हम उसमें भी किसी और का आधार लेते हैं, यह भी एक डिपेंडेंस है, चिंतन का डिपेंडेंस। नाजुक, बाबा ने कहा है कोमल नहीं बनना है, कमाल करना है, किसी मुरली में बाबा ने कहा है। तो जो नाजुक बनते हैं, जो ये कहते हैं बाप कहे और करे या दूसरा कोई करे, वो सब दूर है संपूर्णता से, उनमें शक है, लेश मात्र, संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र शक, वो भी मंजिल से बहुत दूर कर देता है। तो हम आगे की चर्चा जो करेंगे वो करेंगे नाजुकपन पर। नाजुकपन अर्थात साकार मुरलियों में बाबा क्या कहते हैं उसे, साकार मुरलियों में एक शब्द आता है कौन सा, छुई मुई, फीलिंग देवी, किसी ने कुछ कहा और रोना चालू। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है अपने आंसुओं की टंकी को योग की धूप से सुखा दो। कौन कौन सुखाएगा? सबसे पहले तो ये बताओ कि रोज एक बार कौन रोता है, एक बार, वंस अ डे, कोई नहीं। हफ्ते में एक बार कौन रोता है, वो हाथ खड़ा करो, हफ्ते में एक बार, कोई भी नहीं, इतने शक्तिशाली। 15 दिन में एक बार रोने वाले कौन है, वो हाथ खड़े करो, कोई भी नहीं। ये तो बहुत पावरफुल माता है। महीने में एक बार कौन रोते हैं? हाँ एक है महीने में एक बार। और 6 मास में एक बार कौन रोता है? हाँ है, जो कभी नहीं रोते वो हाथ खड़ा करो। फिर जो जिन्होंने किसी में भी नहीं किया वो कहाँ है? रोज रोते रोने में महारथी जो रोते हैं उनके लिए बाबा ने कौन सी संज्ञा दी है माताओं के लिए? विधवा, सुपर विधवा भी है कोई कोई, दिन में ही 10-12 बार रोते हैं। किसी ने कुछ कहा रो दिया, किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया रो दिया, किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा किसी तीसरे से कहा फिर भी रो दिया। हर बात में रोना रोना रोना, अच्छी चीज नहीं मिली रो दिए, जो चाहिए था नहीं मिला रो दिया, किसी से कुछ मांगा था नहीं मिला रो दिए, कोई अपेक्षा कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई आंसू, आंसू तो जैसे यहीं बैठे हैं, बटन दबाने की देरी है। कल बात कर रहे थे ना रिमोट, उधर से बटन दबाए इधर से आंसू चालू। वास्तव में रोना आत्मा को शक्तिशाली नहीं कमजोर करता है। कुछ दिन पहले मुरली चली थी, रोना प्रूफ बनो तभी क्या होगा, विश्व की बादशाही मिलेगी। इसके लिए आज के बाद व्रत, आज की मुरली में कहा है ना टीचर्स बहनों से, व्रत रखो कुछ भी हो जाए, चाहे बेहोश भी हो जाना पड़े तो भी क्या करना है, व्रत को नहीं छोड़ना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रोना नहीं है, नाजुक नहीं बनना है, सेंसिटिव नेचर अध्यात्म के मार्ग में मृत्यु जैसा है, क्योंकि यहां तो सब कुछ सहन करना है और सबको सहन करना है। अगर देखा जाए तो ये ब्राह्मण परिवार ही एक पेपर है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। कब किस से कौन सी परिस्थिति आ जाए पता नहीं, तो कैसे चलेगा कि हम अगर बात बात दुखी हो रहे, बात बात एक शब्द है सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद ही को तीर लगाना उल्टा, खुद ही दुखी होना, खुद ही रोना, खुद ही उदास हो जाना, बार बार उदास होना, बार बार डिप्रेशन, बार बार फ्रस्ट्रेशन, बार बार आंसू। हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है, अगर हमारी ऐसी रोने की अवस्था हो तो हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, पहुंच पाएंगे? तो आज से नाजुकपना समाप्त, शक्तिशाली बनना है। सभी दादियों को बाबा ने कैसे ट्रेन किया, अगर उनको रोना आ गया होता तो बाबा ने कितनी बार कहा है तुम शिव शक्ति शेरनिया हो, तुम भेड़ बकरिया नहीं हो, तुमको कोई भी गले से पकड़कर तुमको खींचकर घसीटकर नहीं ले जा सकता, तुम शक्तियां हो। इसके लिए रोना बंद, दुखी होना बंद। एक है दूसरों को दुख देना, पर उससे भी भयंकर जो बात है वो है स्वयं दुख लेना, दुखी हो जाना, स्वीकार कर लेना, पेन एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे वो स्पंज होता है वो कैसे एब्जॉर्ब करता है, वैसी आदत होती है कईयों को, दुख दुख है नहीं फिर भी दुख को ढूंढेंगे और उसको लेंगे वहां से। दुख जैसी कोई परिस्थिति नहीं है परंतु आदत सी बनी हुई है, जैसे लगता है सारे लोग कांटे ही कांटे हैं, कांटे चुभाते नहीं है परंतु ढूंढते हैं कि ये कांटा है। ये भी एक विडंबना है, मनुष्य का ये ऐसा अद्भुत स्वभाव है कि 10 लोग आ गए और 10 लोगों ने उसकी तारीफ की उसे इतना कुछ नहीं लगता, पर 11वें व्यक्ति ने उसकी थोड़ी निंदा कर दी तो रात भर सोचते रहता है उसके बारे में, इसने ऐसा क्यों कहा। दूसरों के बोल और दूसरों का व्यवहार, ये दो चीजें आत्मा को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। कौन सी दो चीजें? दूसरों के बोल और दूसरों का व्यवहार। हमें अचल रहना है, हमारा यादगार चंचल घर नहीं है, अचल घर है। किसी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है। इसके लिए रोना प्रूफ। लाडले कहते हो, बाबा के लाडले बन जाते हो तो नाज नखरे करते हो, और नाज नखरे करते हो तो फिर नाजुक बन जाते हो, और नाजुक बन जाते हो तो फिर अलबेलापन का पर्दा आ जाता है। अलबेलापन का पर्दा आ जाता है तो कभी दिल खुश तो कभी दिल शिखस्त, ये सीढ़ी ऊपर नीचे करते रहते हो। जबकि तुम्हें काम दिया है कौन सा, तीनों लोक का चक्कर लगाने का, पर तुम कौन सा चक्कर लगाते हो, दिल खुश दिल शिकस्त, दिल खुश दिल शिकस्त। अभी अभी खुश, अभी अभी दुखी, ये स्थिति बाबा को अच्छी नहीं लगती। सदा खुश रहना ये बहुत बड़ी साधना है वास्तव में। कोई एक साधु था जो कि इतना खुश रहता था, इतना खुश रहता था, इतना खुश रहता था, सदैव खुश रहता था। उसके पास जैसे खुशी का अंबार लगा हुआ था, जहां भी जाता था उसको कहते ही विदेश में उसे कहा जाता है द लाफिंग सेंट, इतना वो खुश रहता था। जहां भी जाता था, जिस गांव में जाता था, लोगों को हंसाता था, जैसे उसके जीवन में अपना कोई व्यक्तिगत दुख ही नहीं है। और इस वजह से वो इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर तक उसकी चर्चा थी। और जब वो मरने के समीप आया तो उसने अपने सभी भक्त या शिष्य जो भी थे उसको चाहने वाले उनसे कहा कि मेरी मृत्यु पर कोई भी मत रोना, क्योंकि मैं खुद सारी जीवन भर खुश रहा हूं, कभी रोया नहीं हूं, तो रोना नहीं। परंतु ये सुनकर तो लोग और ज्यादा उससे मिलने आने लगे और ज्यादा दुखी होने लगे। ऐसा दिव्य व्यक्ति जब मरने जा रहा है और हम रोए नहीं, वो तो और दुखी होने लगे लोग। ये मनुष्य का दूसरा स्वभाव है। तो उसने देखा कि इतने लोग रोज उसको मिलने आते हैं और सब दुखी हो रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि वो शरीर छोड़े और इस संसार से जाए। तो एक शर्त रखता है, कहता है जब मैं मरूं और मेरी चिता जलाई जाए तो मेरे वस्त्र नहीं निकालना, जिस वस्त्र में मैं हूं उसी वस्त्र में मुझे जलाना। उसके सभी चाहने वाले कहते हैं ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु और ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि ये मरने की बात बार बार कर रहा है। तो दिखाया गया उस संत की मृत्यु होती है, उसको लेके जाता है शमशान घाट में और उसको जलाया जाते हैं। सभी इतने दुखी और उदास बैठे हुए और अचानक जैसे वो चिता जलने लगती है, जोर से आवाज होने लगती है फुलझड़ियों की और फटाके की, क्योंकि उसने अपने शरीर के अंदर वो सब लगाया रखा होता। और सब लोग एकदम हंसना चालू करते हैं, ये कैसा है, ये तो कभी देखा ही नहीं था। तो लोग कहते हैं देखो ये व्यक्ति कैसा अद्भुत है, जीवन भर भी हंसाया और मरते हुए भी हंसा कर गया। खुशी पर कितनी मुरलियां बाबा ने चलाई है, और फिर भी यदि हम दुखी है, उदास है, खिन्न है, विशुद्ध है, तो क्या कहेंगे, क्या कारण है। दुखस्त कौन कारणम, अपने कारण को ढूंढो और उसे समाप्त करो। कौन सी वो बाधा है, कौन सा वो कारण है जो हमें दुखी करके रखा है, जिसने हम चाहते हैं कि सुखी हो जाए पर होने नहीं देता। जो भी वो कारण हो उसे जानो और उसे समाप्त करो। तो नाजुक नहीं बनना है, सीढ़ी ऊपर नीचे नहीं करनी है, अलबेला नहीं बनना है। तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप तुम्हारा आह्वान कर रहा है, तुम पुरुषार्थियों का आह्वान कर रहा है, क्योंकि संपूर्ण बनने के बाद ही ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा और तुम ब्राह्मण आत्माओं आत्माएं कहां जाएंगे, उस ब्रह्म घर में जाएंगे और फिर राज्य अधिकार पाओगे। तो यहां बाबा ने मुरली पूरी की और बाबा फिर टीचर्स बहनों से मिल रहे हैं। क्या कह रहे हैं टीचर्स बहनों से बाबा, रूहानी सेवाधारी बाप समान। जब एक दूसरे से साथ ही मिलते हैं तो क्या दी जाती है, सौगात। सौगात भी जितनी छोटी हो उतनी अच्छी। तो बाबा ने भी एक सौगात दी है, एक गोल्डन वर्शन की सौगात दी है, एक कम खर्च की मशीन दी है, एक सफलता ज्यादा मेहनत कम का साधन दिया है। कौन सा, कौन सा साधन दिया है, उमंग उत्साह में रहना है और क्या करना है, उत्साह दिलाना है, स्व उत्साह में रहना, उत्साह दिलाने का उत्सव बनाना है, ये कार्य करना है। दूसरों को उत्साह कौन दिला सकता है, जो स्वयं उत्साह में है, स्वयं उमंग में है। और उमंग में रहने का सर्वश्रेष्ठ साधन है ज्ञान का चिंतन और मनन। खुशी वो नहीं है जो ऊपर से दिखाई जाए, जो लोग हैं संसार में भी जिनके मुख पर बहुत बड़ी जोर जोर से जो हंसते हैं, शायद वो अंदर से दुखी होंगे, वो खुशी नहीं है। खुशी अर्थात, खुशी एक आंतरिक अवस्था है आत्मा की। खुशी दिखाने की बात नहीं, हाँ वो दूसरी बात है, वो झलक उसकी दिखेगी, परंतु खुशी बहुत सूक्ष्म चीज है। एक है प्लेजर, इंग्लिश में चार शब्द है, एक है प्लेजर, एक है हैप्पीनेस, एक है जॉय, एक है ब्लिस। इनको इन्हीं शब्दों में मैं कहूंगा क्योंकि इनका हिंदी में लगभग समान शब्द है। प्लेजर अर्थात सबसे नीचे तल का इंद्रिय सुख, केवल भोग का जो सुख है वो तो पशुओं को भी प्राप्त है, प्लेजर। कुछ खा लिया बहुत खुशी, प्लेजर मिला, इंद्रिय सुख सबसे नीचे तल का है, उसके ऊपर है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस थोड़ी ऊंची चीज है। हैप्पीनेस अर्थात उसका देह से थोड़ा कम संबंध है, यहां भावनाएं, इमोशंस, किसी की सेवा कर दी, किसी की मदद कर दी, बीमार को कुछ कर सेवा कर दी, समाज सेवा की हैप्पीनेस। उसके थोड़े ऊपर और एक है, वो है जॉय। जॉय थोड़ा सा वो जो समाज सेवा और उसके भी ऊपर की स्थिति है, जिसका संबंध थोड़ा सा आत्मा से है। यहां जो जॉय की जो अवस्था है वो थोड़ी ऊंची अवस्था है। ये जॉय कवि, साहित्यकार जो प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, वो इन सभी चीजों से ऊपर उठे हुए रहते हैं। उनका आनंद संकल्पों में है, देह में नहीं है। व्यक्ति दो रीति से जीवन जीता है, एक देह के तल पे, एक देह के ऊपर के तल पे। जॉय जो अवस्था है वो बहुत ऊंची अवस्था है, और सर्वोच्च अवस्था है ब्लिस, आनंद। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हो। अगर हमारे बाबा के जो आत्मा के जो सात स्वरूप है, उसमें हम हर जगह कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, पर एक आनंद जो है वो है भगवान आनंद का सागर है, तो हम भी आनंद के सागर है। हम मास्टर आनंद के सागर ये थोड़ा कम कहते हैं, हम अपने आप को भी क्या कहते हैं, मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। जो उसका स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है, दोनों जैसे एक है। वो भी वही तो मैं भी वही, स्वरूप की बात है। या ब्लिस आनंद। तो बाबा ने सौगात दी है, कौन सी? उमंग में रहने की, उत्साह में रहने की, उत्सव मनाने की, सदा उत्सव। विठोबाचे राज्य अम्हा नित्य दीपवाड़ी। संत कहते हैं हर दिन हमारे लिए दीपावली है, हर दिन। अगर ये उत्सव होगा तो क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, लिस्ट गिनाई है। क्या हो जाएगा? समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जैसे कोई विशेष फंक्शन रखते हो तो उसमें भूख भूल जाती है, तो उसमें धन की कमी है भूल जाती है, आपस में खिटपिट है भूल जाते हैं, उसी तरह समस्याएं समाप्त हो जाएगी। एक दूसरा संस्कार मिलाने और मिटाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। संस्कार मिलाने और मिटाना दो शब्द है। संस्कार मिलाना जिसको बाबा कहते हैं रात करो, एक है मिटाना। मिटाना अर्थात पुराने संस्कारों का संस्कार करना, अपने ही संस्कारों का संस्कार करना। दूसरा है दूसरों के साथ संस्कार को मिलाना, मिलाने और मिटाने की मेहनत समाप्त। दो, तीसरा क्या हो जाएगा अगर उमंग उत्साह में रहेंगे तो? आज का बताओ, एक हफ्ते भर का नहीं, कम खर्च वाला मशीन। बाबा कहते हैं सफलता में चार चीजें चाहिए, चारों चीजें कम हो और सफलता ज्यादा हो। सबसे पहले समय कम लगे, सफलता ज्यादा हो। इसके लिए जब भी हम कोई भी सेवा करते हैं इन चार चीजों को चेक करो, समय कम सफलता ज्यादा, खर्च कम सफलता ज्यादा, मेहनत कम सफलता ज्यादा, शक्तियां कम सफलता ज्यादा। कोई भी सेवा की प्लानिंग की जाए तो सबसे पहले देखो कम से कम खर्च में सफलता कैसी ज्यादा हो, कम से कम शक्ति में सफलता कैसी ज्यादा हो, कम से कम समय में सफलता कैसी ज्यादा हो, कम से कम मेहनत में सफलता ज्यादा कैसी हो। तो ये चारों ही बातें आज बाबा ने कही है। चौथा पॉइंट, सभी ने मुरली सुनी भी है और पढ़ी भी है, खुशी में नाचते रहेंगे। उदाहरण कौन सा दिया? फरिश्तों का। जैसे फरिश्तों के पांव जमीन पे नहीं रहते, जमीन में आ गए तो ये कीचड़ा है, ये देह भी कीचड़ा है, इस देह में आनंद लेना ये कीचड़ा है। और क्या क्या हो जाएगा? मेले करो कराओ, प्रदर्शनी करना कराना, कोर्स करना कराना, ये भी विधि कब तक, प्रश्न पूछा है बाबा ने, ये भी साधन कब तक, ये भी साधन कब तक। तो ये भी परिवर्तन हो जाए। और क्या कहा? जैसे क्षमा की तरफ परवाने आते हैं तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, जैसे अभी स्टेज बनी बनाई होती है तो मेले भी बने बनाए होंगे। ये बात कही है बाबा ने। अभी दीदी दादियों को बुलाते हैं उद्घाटन करने के लिए, फिर किसको बुलाएंगे? आपको बुलाएंगे। बाबा कह रहे हैं दर्शनीय मूर्त बन जाओगे उद्घाटन के लिए, टेंट लगाओ, गाइड बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ये कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक मुरली में बाबा ने कहा 71 की कि तुम्हारा परिचय स्टेज सेक्रेटरी नहीं देगा, तुम्हारी स्टेज तुम्हारा परिचय देगा। तुम्हारी स्टेज इतनी ऊंची होगी कि तुम्हारा परिचय किसी और को देने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी स्थिति और तुम्हारे बोल ही तुम्हारे परिचय होंगे। और क्या हो जाएगा? और भी कुछ होगा? इतने हो गए। तो बाबा ने पूछा फिर, ये तो सौगात दी है बाबा ने, हमें क्या देनी है? कौन सी सौगात देनी है बाबा को? सुबह भी इसकी हमने चर्चा की थी, श्रेष्ठ स्थिति की सौगात देनी है। और यहां पर टीचर से मुलाकात में उमंग उत्साह कम होने नहीं देंगे, ना ही दूसरों का होने देंगे, बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। व्रत रखते हैं भक्ति में, और एक बार लिया हुआ व्रत तोड़ते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, नहीं तोड़ते हैं। तो यहां पर भी ये व्रत लेना है, कौन सा? उत्साह का। इसकी वरमाला पहननी है, उधर भी कहा है बाबा ने इसकी वरमाला पहनो, तब कहीं जाकर लक्ष्मी और नारायण को वर सकोगे। तो उमंग उत्साह की वरमाला पहननी है। और तो चाहे कुछ भी हो जाए, उत्साह मिटाने वाले आएंगे, समस्या आएगी, दो चीजें कही है, फिर भी उत्साह कम ना हो। पर अभी प्रश्न यह है कि सदा उमंग उत्साह में कैसे रहे, चिंतन का विषय तो यह है अब कि सदा ही उमंग उत्साह में कैसे रहे। अब भट्टी है तो उमंग उत्साह है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, भट्टी पूरी हुई, उमंग उत्साह धीरे 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 कम और कुछ समय के बाद समाप्त। ऐसा क्या करे कि पुरुषार्थ के प्रति हमारा उत्साह हमेशा ही बढ़ा रहे? ऐसा क्या करे कि ईश्वरीय प्रेम के लिए जो उत्साह है वो कम ना हो? क्या करे? नवीनता लानी है। क्या करना है? क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मकता लानी है, हर एक चीज को नए दृष्टिकोण से देखना है। अब यही मुरली, कितनी अलग अलग दृष्टिकोण से हम इसी एक मुरली को देख रहे हैं, अलग 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 दृष्टिकोण से एक ही मुरली, मुरली तो एक ही है, यही मुरली विश्व भर में असंख्य आत्माओं ने पढ़ी होगी, चिंतन किया होगा, मनन किया होगा, हजारों बहनों ने ये सेंटर्स पर मुरली चलाई होगी, हर एक का दृष्टिकोण अपना अपना। हमें रचनात्मकता लानी है, चिंतन बिंदु क्या क्या है उसको उठाना है। जैसे आज की मुरली में सहनशीलता, आज की मुरली में नाजुकपन, उमंग उत्साह, संपूर्णता की स्टेज, अंतर क्यू, कितनी सारी पॉइंट्स बाबा ने गिनाए, संशय के क्या कारण है, शक के क्या कारण है, ये सारी बातों पर चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना। वास्तव में मुरली से प्यार अर्थात बाप से प्यार। कोई कहे कि मेरा बाबा से बहुत प्यार है, मैं अगर छाती फाड़ के भी दिखा दूं अंदर बाबा है, परंतु मुरली मुझे पसंद नहीं आती, तो मानेगा क्या बाबा? बाबा से कहे बाबा मेरे हृदय में तुम हो, देखो हनुमान की तरह अपनी छाती फाड़ कर दिखा दे, बाबा क्या कहेगा? मानेगा नहीं बाबा। कोई अगर कहे कि भगवान से हमें बहुत प्यार है, तो उसकी मुरली से भी उतना ही प्यार, उसकी मुरली से उतना प्यार, उसके एक एक वाक्य से उतना प्यार, उसके एक एक शब्द से उतना प्यार, उसकी दृष्टि से प्यार, उसके यज्ञ से प्यार, उसके मधुवन से प्यार, उसके इस परिवार से प्यार, बाप से प्यार अर्थात, ये चारों ही चीजें आनी चाहिए उसमें। सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए क्रिएटिविटी, न्यूनेस, नवीनता, रचनात्मकता लानी है। क्या करे मुरली में क्या नवीनता लाए, ज्ञान में क्या नवीनता लाए, योग में क्या नवीनता लाए, सेवाओं में क्या नवीनता लाए, नए नए संकल्प उत्पन्न करे। और जितना अमृत वेला ये करोगे, टचिंग्स होगी ऊपर से, नए थॉट्स आएंगे, नए संकल्प आएंगे, नए विचार आएंगे, नए प्लान्स टच होंगे। दादी को, दादी प्रकाशमणि ने सेवाओं का इतना विस्तार देखो कैसे किया, इतना विस्तार, कहां 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 से क्या सेवा हो गई। दादी को अमृत वेले संकल्प आता था, और दादी का एक संकल्प अर्थात इतनी बड़ी सेवा का निर्माण। तो हमें भी ऐसे ही स्वयं को उमंग उत्साह में रखने के लिए नवीनता लानी है, अपनी दिनचर्या में नवीनता, योग में नवीनता, ज्ञान में नवीनता, तपस्या में नवीनता, साधना में नवीनता। जो सुबह 7 बातें सुनाई, जो हमें कल से करनी है, सबको याद है ना वो 7 बातें? जिन्होंने डायरी में लिखी होगी वो फिर से उन्हें रिवाइज करे, क्योंकि हमारी भट्टी आज नहीं कल से चालू हो रही है। बाबा 16 तारीख को आ रहे हैं, उसके सामने हम जब बैठेंगे तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो, ताकि हम गर्व से बैठ सके उसके सामने, आंखों से आंखें मिला सके, नहीं तो आंखें नीची करनी पड़ेगी। सदा उमंग उत्साह में रहना, सदा उमंग में रहना। तो ये आज की मुरली थी। ऐसे संपूर्णता की समीप आत्माओं को, ऐसे ब्रह्मा बाबा के साथ साथ संपूर्णता को वरने वाली आत्माओं को, ऐसे सदा खुश नसीब आत्माओं को, ऐसे दिल खुश आत्माओं को, ऐसे अपनी स्पष्टता के द्वारा दर्पण बन, अपनी स्पष्टता के द्वारा दर्पण बन दूसरी आत्माओं को भी संपूर्णता का स्पष्ट साक्षात्कार कराने वाली आत्माओं को, ऐसे अपने संपूर्णता की अनुभूति द्वारा दूसरी आत्माओं को संपूर्ण बनाने की प्रेरणा देने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद अगला सत्र। ओम शांति।